नवद्वंद्यम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण
पूजाया है उसने पूछा है कि तीनों गुणों के स्वरूप कैसे होते हैं। सत्व रजस तम ये तीन गुण है। सत्वम रजस तमो इति गुणा प्रकृति संभव रजस तम मान सत्व रजस तम ये गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और इस देह में बांधने वाले ये है और बांध करके और जन्म देने वाले यही है। कारण गुण संगोष्य सदा सद योनि धर्म सो उस नीच योनियों में जन्म के कारण ये गुण ही होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था सतोगुण में स्थित रहने वाले ऊपर हो जाते हैं। रजोगुण में स्थित रहने वाले मध्य लोग में रहते हैं और निंदनीय जो तमोगुण है उसमें स्थित रहने वाले अधोगति हो जाते हैं। तो गति देने वाले ये गुण ही है। गुणों के बीच में फंसा हुआ ही प्रतिभा है। ऐसे भागवत में ये अहम को भी तीन तरह का माना तीन गुण अहंकार वो सात्विक है राजस है तामस है उनसे सब सृष्टि पैदा होती है ऐसा लिखा है। तो गुणों की पहचान क्या है? गुण खुद दिखते नहीं है। गुणों की पहचान उनकी वृत्तियों से होती है। गुण खुद अतिंद्रिय है ये इंद्रियों का विषय नहीं है। जैसे इंद्रिया इंद्रियों का विषय नहीं है जो चक्षु इंद्रिय है ये देखने की जो शक्ति है ये अतिंद्रिय है ये दिखने वाली नहीं है। कान में सुनने की शक्ति है वो अतिंद्रिय है मानो देखने में नहीं आती इंद्रियों का विषय नहीं होती। ऐसे त्वगेंद्रिय है त्वचा में जो स्पर्श करने की शक्ति है ये त्वगेंद्रिय भी अतिंद्रिय है इंद्रियों से देखने में नहीं आती। रस के जो है घ्राणेन्द्रिय है गंध लेने वाली जिससे गंध लेते हैं वो घ्राणेन्द्रिय भी अतिंद्रिय है ये भी इंद्रियों का विषय नहीं है। और रसना से रस घ्राण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांच विषय है। तो पांचों विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रिया ये अतिंद्रिया है। ऐसे कर्म भी तीन तरह होते हैं। ज्ञान भी तीन तरह का होता है कर्ता भी तीन तरह होता है कर्म भी तीन तरह होता है बुद्धि भी तीन तरह की होती है दृष्टि भी तीन तरह की होती है। ऐसे गीता में तीन तीन तरह की बातें बहुत बताइए 13 बात बताइए। तो इनकी पहचान किसने होती है? तो भगवान ने कहा है कि सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते। सब इंद्रियों में जो प्रकाश होता है प्रकाश और ये ज्ञान दो चीज बताइए। सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या विरुद्धम सत्वमित्रता, सब इंद्रियों में प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, उस समय समानाचार्य के सत्वगुण बढ़ा है, ये उनकी ही पहचान बताई है, गुण खुद दिखते नहीं। तो सौंदर्यों में प्रकाश और ज्ञान दो क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान देना। मानो सुनने की शक्ति, हम सुनते हैं, मैं बोलता हूँ, ये बोलने की और सुनने की जो शक्ति है, इसमें प्रकाश होता है, मानो साफ साफ दिखता है, सुनते हो तो साफ साफ समझ में आता है, वो प्रकाश कहलाता है। और उसमें जो विवेक होता है, सत असत का, नित्य अनित्य का, सार असार का, कर्तव्य अकर्तव्य का, दोनों ज्ञान अलग अलग होते, उसको कहते ज्ञान। जैसे थोड़ा सा आलस आने लगेगा तो सुनते हुए तो मालूम होता है कि मैं सुन रहा हूँ, परंतु वो प्रकाश वैसा नहीं रहा, तो याद नहीं रहती, ये बात भूल जाते हैं। तो कारण की उस समय इंद्रियों प्रकाश रही है, और प्रकाश हो और विवेक कमजोर होता है तो सोचो ठीक से लिया, परंतु वो क्या है पता है। जैसे ये प्रश्न आया कि ये सत्व रजतम क्या है, इनका अलग अलग न जानना है, ये अविवेक है। तो ज्ञान का अर्थ हुआ अविवेक, ठीक ठीक तरह से तीनों को जाने, वो विवेक शक्ति। तो विवेक और प्रकाश दो जब अपनी इंद्रियों में आ जाते हैं, मन में भी प्रकाश, स्वच्छता, निर्मलता ये आ जाए, और विवेक आ जाए, तो समझना चाहिए कि ये भी सत्वगुण बढ़ा हुआ है। ऐसे समझना चाहिए, माना इन्होंने भी ये सत्वगुण ऐसा नहीं बताया। ऐसे लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अस्मृहा, ये पैदा हो तो जानना चाहिए जो गुण बढ़ा है। हरेक का लोभ, इतनी देना, इतनी चीज ये लेना, इतने हमारे हो जाओ, इतना हो जाओ, ऐसे लोभ होता है लेने के लिए, वो जब बढ़े तो समझना चाहिए जो गुण बढ़ा है। और प्रवृत्ति काम करने, बैठे जा कर दो, चलो भाई काम करो, काम करो, काम करो, ऐसे प्रवृत्ति होती है। और कर्मणाम प्रवृत्ति आरंभ और आरंभ होता है, तो आरंभ और प्रवृत्ति में फर्क है। कभी प्रवृत्ति, कभी निवृत्ति, कभी किसी से निवृत्ति, किसी में प्रवृत्ति, इधर से हट गया, इसने लग गया, ये प्रवृत्ति है। और आरंभ मानो अभी देखो फैक्ट्री एक खोलनी चाहिए, एक जगह दुकान करनी चाहिए, अमुक जगह ऐसी बिक्री अच्छी होती तो वहां पर अपने कारखाना खोलना चाहिए, ये कर्मों का आरंभ है। प्रवृत्ति और आरंभ दोनों में भेद है थोड़ा, ये एक प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है और ये कर्मों का आरंभ होता है। तो ये आरंभ जब मन में आवे तब समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा हुआ है। और अशांति पैदा हो जाए, हृदय में हलचल हो जाए, कहीं मन लगता नहीं ठीक तरह, तो समझना चाहिए रजोगुण बढ़ा है। रहस्यता भी जानती, इतने रजोगुण से पैदा लोभ प्रवृत्ति कर्मणाम आरंभ अस्मृहा, पांच ये चीज जब बढ़ती है तो समझना चाहिए अब रजोगुण बढ़ा है। अप्रकाश, अब सुन तो रहे परंतु कुछ समझ नहीं रहे हैं, अप्रकाश है, अप्रवृत्ति है, कुछ काम करने का मन नहीं करता, पड़ जाओ, अब छोड़ो भाई, अब तो मन नहीं करता कुछ करना, अब सो जाओ, आराम करो, अब कुछ करने का मन नहीं करता, तो समझ रहे तमोगुण बढ़ा है। तो तमोगुण बढ़ने पर ये गुण पैदा होता है, अप्रकाश हो, अप्रवृत्ति से प्रमाद और खेल तमाशा में लग जाए, हंसी दिल में लग जाए, एक एक पानी उछालता है, ऐसा करता है, ऐसे प्रमाद बीड़ी सिगरेट तो पीता है, सिनेमा देखता है, इसमें देख रहे में मन ज्यादा लगा तो सुनना चाहिए रजोगुण बढ़ा हुआ है, ये रजोगुण बढ़ने के लक्षण है। कहते हैं उसको समझ में नहीं, उल्टा समझ लेता है। अधर्म धर्म इसी मन से समस्या मिलता, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, पुरुषम मिटाना है, आश्रम मिटा देना है, परम धर्म मिटा देना है, हरे के साथ में शादी कर देनी है, ये सब मिटा देना है, खान पान का भेद मिटा देना है, ऐसी मन में आती तमोगुण बढ़ा हुआ है। ये तमोगुण बढ़ता है तब ये लक्षण होते हैं। लोभ अप्रकाशो अप्रवृत्ति से प्रमाद और मुंह मूढ़ता, तभी शेतारी जानते मूर्य पढ़ने पर ये पैदा होते हैं। तो ये पैदा मन में होते हैं सुना चाहिए, तमोगुण बढ़ा हुआ है। सात्विक राजसी तामसी बुद्धि बताई है हमारी 30, 31, 32 में, तो वो बुद्धि के लक्षण है, ऐसे धृति के लक्षण है। ये तीनों ही गुणों के वर्णन में विस्तार से आता है। तो इन लक्षणों से पता लगता है गुण है, स्वयं गुण दिखते नहीं, गुण की वृत्तियां दिखती है, उन वृत्तियों से गुणों की पहचान होती है और इनका फल होता है। फिर कर्मण सुख से सात्व निर्मलम फलम, रस रज फलम दुख, उसे निर्मल फल होता है। रजोगुण का फल दुख होता है और मूढ़ता तमोगुण का फल होता है, अज्ञानम तमसा फलम, ऐसे तीन गुण है। अब दूसरा एक प्रश्न आया है, ये तो गुणों की बातें हम ज्यादा क्या करें, गीता में बहुत है, तेरे बात बताइए तेरे, जो एक एक दो दो कहे तो बहुत लंबा हो जाएगा विषय। दूसरी कहे करीसिय वसनम तब, तो कर्तापन का अहंकार तो फिर भी रहता है, आपकी आज्ञा पालन करूंगा। ये विचार खूब समझना है, ध्यान दें आप लोग। ये जो मैं हूँ सब मानते हैं ना, ये मैं हूँ तीन तरह का होता है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में अहं को मिटाना होता है, पहले खूब पहले मिटाने की बात आती है, और कर्म योग में अहम के शुद्ध करने की बात आती है, और भक्ति योग में अहम को बदलने की बात आती है। ये खास बात सुन रही है, और अंत में नतीजा मिट जाता है, ये होता है, अहम और मम मिट जाते हैं। परंतु पहले आरंभ में साधक के लिए ये चीज है, तो तीनों के निर्मम और निरंकार का कहा है गीता में, निराहंकार होना चाहिए, निर्मम भी होना चाहिए। तो दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में निर्मम और निरंकार कहा है कर्मयोगी के लिए, ब्याह कामान जैसर्वाप निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति मरी गति, वो निर्मो निरहंकारों से शांति की प्राप्ति होती है। 12वें अध्याय में निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे, ये 12वें का 13वां श्लोक, उसमें निर्ममो निरहंकार बताया। तो उसमें भी ममता अहंता मिटनी चाहिए, भगत के भी, कर्मयोगी की मिटनी चाहिए, और ज्ञान योगी के लिए बताया 18वें अध्याय में 53 में, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो अहंकार नाश से बात बताई, इन दो तीनों में फर्क है, जिसमें ज्ञान योग में फर्क ज्यादा है। ज्ञान योग में अहंकार का नाश पहले बताया, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम, फिर निर्मम आया, और कर्मयोग भक्ति योग निर्मम और निरंकार आया, पहले ममता नष्ट होती है फिर अहंता नष्ट होती है। और ज्ञान योग में पहले से ही अहंकार नष्ट होता, ये जो प्रश्न पूछा कि अहंकार आ गया तो अहंकार आ गया। अहंकार शुद्ध भी होता है, अहंकार बदलता भी है, अहंकार मिटता भी है, तीनों होते हैं। तीनों का अंत में नतीजा मिट जाता है, ये होता है। तो कर्मयोग में अहंकार शुद्ध होता है, वहाँ बताया है कायेना मनसा बुद्धिया केवल योगिना कर्म कुर्वन्ति संयम तत्व आत्म शुद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि नहीं कर्म करते तो अंतःकरण अहम शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध नहीं रहता। अशुद्ध कामना का काम उससे कोई होता ही नहीं, जो कुछ आदमी होते हैं कामना रहित सब के कार्य होते हैं, ऐसा निर्मल अहंकार हो जाता है कर्म योग से। और भक्ति योग से बदल जाता है, और ज्ञान योग में मिट जाता है। तो मिट जाए निर्म निरंकार अहंकार मिट करके भक्ति योग में बदलता है। तो करिष्ये बतनम तव, ये अहम नहीं है, जो बंधन कारण अहम वो नहीं है। भक्ति में तो ऐसा मांगा है, अस अभिमान जाई जनी भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये अहम मिटे नहीं हमारा, ये रहना चाहिए। अस अभिमान जाई नहीं भोरे, भूल करके भी ये अभिमान हमारा ना मिटे। मैं सेवक रघुपति रघुनाथ जी महाराज मारे माना गया, मैं भगवान का हूँ। अब संसार के साथ अहम नहीं रहा, अब अहम केवल परमात्मा के साथ रहा, तो ये बदल गया। तो बदल जाना बहुत बढ़िया चीज है। करिष्ये वचनं तव, अर्जुन ने कह दिया महाराज आप जो कहोगे सही करूँगा, अपना कुछ नहीं करना। पहले अर्जुन ने कह दिया था शरण होने के बाद भी कि मैं योद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, अहंकार मिटा तो ये नहीं कहा मैं युद्ध करूंगा, कहना चाहिए ऐसा ही। पहले कह कर मैं न योद्ध से गोविंद मुक्त हुआ, वह न योद्ध से कहा तो जब भगवान की शरण हुआ तो कहना चाहिए युद्ध करूंगा, ये नहीं कहा। तो क्या करेगा कि मेरे को पता नहीं क्या करूंगा, जैसे आप करा वो शो करूंगा। तो अहंकार बदल गया, करिष्ये वचनं तव, आप आज्ञा दोगे वही करूंगा। तो ये बदलने पर अहंकार दोषी नहीं रहता। जैसे आग में आप कंकर पत्थर ठीकरी डालोगे तो चमकने लग जाती, काला साफ कोयला वो भी आग में रखोगे तो चमक उठेगा, लकड़ी डाल दो वो भी चमक उठेगी। ऐसे भगवान के साथ में कोई संबंध करो वो भी चमक उठेगा। और ये बातें तो दूर रही, भगवान के साथ बैर करे तो बैर भाव वो सुमरे निश्चर राक्षस बैर भाव सुमेरे को याद करते। तो बैर से द्वेषा निर्पा शिशुपाल आदि बैर से मुक्त हो गए। भयात कंस कंस भय से भगवान को याद करता है। तो भगवान को याद करने क्या हुआ, वो भय भी कल्याण करने वाला, द्वेष भी कल्याण करने वाला, राग भी कल्याण करने वाला, प्रेम भी कल्याण करने वाला, ये बताया भक्त्या वयम। नारदी कहते हैं भक्ति हम लोग कहते हैं संबंध, विष्णु कह ये सब अपने संबंध भाई संबंध कुटुम्ब से अपनापन करते हैं। तो भगवान के साथ किसी तरह से अपनापन कर लो, वो कल्याण करने वाला होगा। जैसे आग में तीन रहेगी वो सब चमक उठेगी, ऐसे भगवान के साथ से भय से क्रोध से प्रेम से संबंध से प्रेम से आदर से किस तरह से कर लो, भगवान के साथ संबंध है। तस्मिन नैव करणीयम् नारद जी महाराज ने कहा है ये काम क्रोध आदि तस्मिन नैव करणीयम्, भगवान में ही करना चाहिए। भगवान में दो संबंध जोड़ देगा ठीक हो जाएगा। भगवान की माँ बन जाओ, भगवान की बेटी बन जाओ, भगवान की मित्र बन जाओ, भगवान की सखा बन जाओ, भगवान का दास बन जाओ, भगवान के गुरु बन जाओ, एक संबंध भगवान के साथ कर लो, कोई सा संबंध कर लो। वो कल्याण करने वाला है, क्योंकि संबंध भगवान के साथ हो गया। आग में जो चीज देखो सबकी सब चमक उठी, सबकी सभी कंकर पत्थर भी चमकने लग जाए, कोयला भी चमकने लग जाए, काश भी चमकने लग जाए, अंगार हो जाए, लोहार वो भी चमकने लग गया। ऐसे भगवान के साथ संबंध जुड़ने पर वो पवित्र हो जाता है, अपवित्र नहीं रहता, अपवित्रता मिट जाती है, शुद्ध हो जाता है, फिर वो मिट जाता है आपसे आप ही। अगर न मिटे तो कोई बात नहीं, संत तो कहते हैं ऐसा अभिमान जाए जनी बोले, मैं सेवक रघुपति, मैं सेवक हूँ, रघुनाथ जी मेरे मालिक है, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें तुम्हें सर्व सब उस मेरे आप ही हो, माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी विद्या धन संपत्ति वैभव आप ही हो मेरे तो। बस फिर भगवान को हो गए महान शुद्ध हो जाएगा। तो ये अहंकार मिटना बात है ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में मिट जाएगा। आप भगवान का उपचार में भगवान जाने मत्स्यता मधुगत प्राणा बोध यंत्र परस्परम कथ यंत्र से मांग नित्यम तुष्यंती से रमंती से तेसाम सतत युक्ता नाम भगवान के साथ लग गए, भजताम प्रीति पूर्ण प्रेम पूर्ण भज रहे हैं। तो ददामी बुद्धि योगम तम वो बुद्धि योग देता हूँ जिसे मेरी प्राप्ति हो जाए, तेसाम अनुकम पास कृपा करने के लिए अंतकरण में ऐसे अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अंधकार को देवी पिमान ज्ञान दीप के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। तो भीतर में रहता हूँ सब नष्ट कर देता हूँ, अज्ञान दूर कर देता हूँ, आत्मभाव से ज्ञान दीप भास्वता ज्ञान दीप नाश्ता। तो वो अहंकार मिट गया करिष्य वचनम तब ये बदल गया। पहले तो जब भगवान नहीं कर दिया ये अहंकार आश्रित नहीं मन से अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा, ये अहंकार का आश्रय है। कभी इसी वचनों से अहंकार का आश्रय नहीं, आश्रय भगवान का। भगवान के माम एकम शरणम भजा, एक मेरी शरण आ जा, मैं पापों से मुक्त कर दू, तू पाप क्यों डरता है। तो भगवान के शरण हो जाना, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। कहीं कहीं तो इस बात की अहंकार मिटने की अपेक्षा भी बड़ी अवस्था है। भगवान के साथ जो मेरापन है ये बहुत भीष्म है। ज्ञान से भी प्रेम की महिमा अधिक बताई, कई जगह प्रेम से ज्ञान की महिमा बताई, कई जगह ज्ञान से प्रेम की महिमा बताई। अब वास्तविक होने पर प्रेम और ज्ञान दोनों हो जाते हैं, एक को लेकर चलते हैं तो पूर्णता में कुछ कम ही रहती है। केवल ज्ञान को लेकर चले तो भी, केवल प्रेम को लेकर चले तो भी, जहाँ प्रेम को लेकर चलते हैं और दृढ़ता का संबंध रहता है तो वो प्रेम नहीं होता, राग हो जाता है जड़ता का संबंध होने से। तो ज्ञान से जड़ता दूर होती है, जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य उमो सहाया संसार सत्य दिखने लगता है। तो प्रेम के बिना ज्ञान होता है वो शून्य हो जाता है, और ज्ञान के बिना प्रेम होता है वो अशक्ति हो जाती है। एक खास समझने की बात है, ज्ञान नहीं हो सत असत का ठीक निर्णय नहीं हो और प्रेम आकर्षण हो जाए तो वो आकर्षण आसक्ति हो जाती है और संसार से निवृत्त हो जाए, और अगर प्रेम नहीं हो संसार दूर हो तो वो क्या था शून्य आ जाता है। अगर कुछ नहीं शून्य आ जाता है, जैसे बौद्ध होगा शून्यवाद है, कुछ है ही नहीं कुछ भी। आजकल के वैज्ञानिक भी कहते हैं इससे अगर कुछ नहीं तो कुछ नहीं क्या हुआ कि ज्ञान तो है नहीं और बुद्धि तीक्ष्ण बहुत करी विचार किया, तो विवेक शक्ति न होने से उनका गाड़ी शून्यता आ जाती है। तो प्रेम होता है तब वो असली चीज होती है। तो प्रेम और ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। आकर्षण भगवान में होना चाहिए। भगवान में आकर्षण नहीं होगा तो जड़ता आ जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। आकर्षण होगा संसार में खिंचाव होगा, उस आकर्षण को कामना कहते हैं, वो आसक्ति कहलाती है, राग कहलाता है। संसार में खिंचाव है, जो भगवान में खिंचाव होता है वो प्रेम कहलाता है। वो खिंचाव भगवान में चाहिए। केवल ज्ञान विचार करते हैं और प्रेम की कमी रहती है तो उसमें भी उद्धार हो सकता है। ज्ञान उद्धार तो हो जाएगा, विवेक हो गया ठीक तरह से, कल्याण तो हो सकता है, परंतु प्रेम का जो एक विलक्षण आनंद है वो नहीं मिलता है। ज्ञान में ज्ञान हो जाए और प्रेम न हो, वो मैं नहीं कहता हूँ, जड़ता की बात नहीं है। विवेक पूर्वक ज्ञान हुआ, विवेक को आदर दिया है, आसक्ति नहीं रखा है, परंतु महत्व केवल प्रेम को ही दिया है, ज्ञान को ही दिया है, तो ज्ञान होने पर मुक्ति हो जाती है, परंतु प्रेम नहीं होता है। कब? कि जब वो ज्ञान को ही महत्व देता है, प्रेम का संस्कार करता है, अपमान करता है तब, और अपमान न करे ज्ञान का प्रेम सुध हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाता है। ऐसे प्रेम का आदर करके ज्ञान का निरादर करता है। ये संप्रदायों में, ज्ञान की संप्रदाय में प्रेम का निरादर करते हैं। भेदवादी मातवादी कहते हैं, भेदवादी ये ठीक नहीं, भेदवादी का संग अच्छा नहीं, ये कहते हैं ना, तो वो प्रेम के तत्व को जानते नहीं, तो भेद नहीं चाहते वो, तो उनका प्रेम है वो भगवान प्रेम नहीं होता। अच्छा तेज वैराग्य हो तो ज्ञान हो सकता है, नहीं तो ज्ञान होना भी मुश्किल है, पर तो ज्ञान मुक्ति हो जाएगी मगर प्रेम नहीं होगा। ऐसे प्रेम करने वाले ज्ञान का निरादर करते हैं, ज्ञान कुछ नहीं, प्रेम है वही ठीक है, ऐसे मानने ज्ञान का निरादर करते हैं, तो प्रेम में राग नहीं मिटेगा। भोगों में, मान बढ़ाई में, पदार्थों में, संग्रह में राग नहीं मिटेगा। तो राग मिटने के लिए आवश्यकता है ज्ञान की, और ज्ञान में आवश्यकता है प्रेम की, नहीं तो शून्यवाद हो जाएगा। इस वजह से दोनों चीजों की बड़ी आवश्यकता है। जहाँ विरोध नहीं है, ज्ञान का निरागर नहीं है, ऐसा प्रेम होने पर बोध हो जाएगा, और बोध में अगर भक्ति का निरादर नहीं है तो प्रेम हो जाएगा, आप साफ हो जाएगा स्वाभाविक ही, क्योंकि प्रेम और ज्ञान दो चीज है नहीं, ज्ञान नहीं भक्ति नहीं, कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा, दोनों ये संसार में उत्पन्न होना नष्ट हो रहा है, ये जन्म मर मिटाने में दोनों ही एकदम ठीक है। इस वास्ते ज्ञान में भक्ति में भेद नहीं है। तो भेद होता है क्या, एक संप्रदाय को लेकर और दूसरे संप्रदाय के साथ विरोध, ये महान घातक है साधक के लिए। ध्यान देकर सुनने की बात है, ये बहुत प्रचार है आज, संप्रदाय के एक एक संप्रदाय के साथ विरोध करते हैं। अरे विरोध संप्रदाय का तुम बिगाड़ नहीं सकोगे, अपना जीवन बिगड़ जाएगा, संप्रदाय क्या बिगाड़ोगे। हम अद्वैत संप्रदाय को मानने वाले हैं, आप द्वैत संप्रदाय को मानने वाले हैं, तो हम द्वैतवाद का खंडन करेंगे और अद्वैत का मंडन करेंगे, तो द्वैतवाद खंडन करने से क्या भक्ति आपकी मिट जाएगी, आपकी भक्ति नहीं मिट जाएगी, हमारे भक्ति नहीं प्राप्त होगी, हम वंचित रह जाएंगे। ऐसे भक्ति मार्ग वाले ज्ञान का खंडन करेंगे, मायावादी है कुछ नहीं है, तो सब कुछ नहीं है, ऐसा खंडन करेंगे तो उस ज्ञान की संप्रदाय थोड़ी बढ़ जाएगी, आप उस ज्ञान से वंचित रह जाओगे। इस वास्ते संप्रदाय के अनुसार साधन करना है, पर दूसरी संप्रदाय को नीति छोटी ऐसे नहीं समझना चाहिए। नारायण और नगर के रज्जम राह अनेक, भावे आवो किधर से आगे अस्तर एक। वृंदावन में आना चाहते हैं, वे उत्तर की तरफ रहने वाले हैं, वे कहते हैं कि वृंदावन दक्षिण में है, और दक्षिण में रहने वाले कहते हैं वृंदावन तो उत्तर में है। अगर दोनों फोन में बात करे तो उनकी बड़ा विरोध हो जाएगा। अरे हमने देखा है, हम गए हैं वृंदावन, वृंदावन बिल्कुल उत्तर में है। दक्षिण वाले कहते हैं हम गए हैं, हमारे को पता है बिल्कुल दक्षिण में है वृंदावन। ऐसे पूर्व में रहने वाले कहते हैं वृंदावन पश्चिम में है, पश्चिम में रहने वाले कहते ना साहब पूर्व में है वृंदावन, तो हम गए हमने देखा हम जानते हैं पूर्व में, तो लड़ाई करते रहो मिलेगा नहीं, वृंदावन नहीं पहुंचेगा। तो क्या करे, वो कहते पूर्व ऐसी बात है, हमारे पश्चिम में पश्चिम तो ठीक पहुंच जाएंगे, पूर्व वाले पहुंच जाएंगे, उत्तर वाले दक्षिण में पहुंच जाएंगे, क्योंकि वे द्वैत अद्वैत विशिष्टा द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैताद्वैत अचंद भेदा भेद, ये पांच विशेष प्रकार है अलग अलग आचार्यों के। तो इन प्रकार के अनुसार से अनुष्ठान करो, पर दूसरे का खंडन मत करो, दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे का तिरस्कार मत करो, दूसरे को निश्चित दृष्टि से मत देखो। जो आपके बाधा लगा देगा परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधा लगा देगा, इस वास्ते निंदा मत करो, खंडन मत करो, विरोध मत करो। इसमें क्या बड़ा आनंद होता है, आपस में बैर हो जाता है। आजकल के लोग तो कहते हैं कि सत्संग करने से द्वेष पैदा हो जाता है, बैर हो जाता है, आपस में लड़ाई करते हैं, सही और साक्ष आपस में लड़ते हैं, सही और वैष्णव वास्तव आपस में लड़ते हैं। अरे लड़ते हैं बेसमझी से, ये संप्रदाय निराज करने वाला नहीं है, ये तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। पहले बिल्कुल दोष दिखता है, अलग अलग दिखता है, तो अलग अलग दिखने पर भी परमात्मा तत्व में पहुंचाने वाले हैं। आपस में सत्संग करने वाले कहे हमारे स्वामी जी तेज है, वो कहते हमारे पंडित जी बड़े तेज है, अगर मुफ्त में बीकानेर में मोहल्ला होते ना अलग अलग मोहल्लों के साल होते हैं गोसा, उनको खिलाते पिलाते करते हैं, फिर डराते हैं आपस में, डराए देखो कौन गोद कितना तेज है, ऐसे गोद लड़ाया करते हैं। तो इस तरह से सत्संगी भी ये साधु और पंडित है ना गोधा, उनको लड़ाते हैं हमारे महाराज ठीक है, हमारे पंडित ठीक है, अब उसमें गोधा लड़ा, तो मुक्ति थोड़ी हो जाएगी गोधा लड़ा मौजूद। अरे तुम्हारे ठीक है तो तुम अनुष्ठान करो, निंदा क्यों करते हो, खंडन क्यों करते हो, उनका तिरस्कार अपमान क्यों करते हो, तुम्हारा प्रचार ठीक है तो उसके अनुसार साधन करो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहा, अपना काम ठीक कर, उनके तू क्यों चर्चा करता है। ये मुफ्त में गलती गलती हो जाती है और परमात्मा स्वरूप से वंचित रह जाते हैं, मन में समझते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हम एक निष्ठ है, अनन्य भाव है हमारा, अनन्य भाव उसका नाम नहीं है, अनन्य भाव उसका नाम नहीं है। जैसे यहाँ कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आए तो भगवान को नमस्कार किया मंदिर में, तो कहा कि आप कैसे करते हो महाराज, इस मोड़ा आदमी नमे सो मूर्ख हो, अपने अपने इष्ट को नमन करे सबको, तो आप राम जी के भक्त हो कृष्ण को नमस्कार क्यों करते हो। तो गोस्वामी जी महाराज कहते महाराज मैं तो मैं भगवान को नमस्कार करता हूँ कि तुम्हारे तो रामचंद्र जी है, तो रामचंद्र जी है ही कृष्ण रूप से बने हुए राम जी है, तो भगवान को नमस्कार किया तो कित मुरली कित चंद्र का कित सखियन को साथ तुलसी जन के कारण में कृष्ण भय रघुनाथ रंजा जी हो गए। तो नमस्कार मैं कहा कहूँ सभी आपकी भले विराजे नाथ आज बड़ा सुंदर उदाहरण किया तुलसी मस्तक निमित धनुष बांध लो हाथ आज धनुष बांध लो नमस्कार करते तो धनुष बांध लो दूसरे के लिए आप कह रहे कि धनुष बांध लो हाथ आपने मूली ले ली आप धनुष बांध लो तो मूली लेने पर दूसरा मानते हैं क्या वो दूसरा मानते हैं धनुष बांध लो क्यों कहते है हमारे राम जी कृष्ण रूप है यहाँ सूरदास जी महाराज कृष्ण रूप है मान राम रूप में है तो कृष्ण भगवान की लीला कहने वाले सूरदास जी महाराज रामा राम रामावली है क्या है नाम राम पदावली राम जी की स्तुति करी है और ये बने प्रतिक्रिया में कृष्ण भगवान की स्तुति करी है तो उनके मन में दो भाव नहीं है एक निष्ठा एक है तो एक निष्ठा में मानते हैं एक बार एक राक्षस था वो राक्षस आया तो उसको माना राम जी ने याद किया कृष्ण भगवान ने याद किया हनुमान जी को तो हनुमान जी आ गए तो बोलो क्या है कि भाई ये राक्षस को मारना है कि मारा राम रूप हो जरूर हमारे को आज्ञा दो तो राम हो करके दो मैं तो राम जी की आज्ञा पालन करता हूँ तो भगवान राम रूप आज्ञा नहीं उसको मार दिया कि हनुमान से मरेगा ये तो राम रूप बन गए सत्य भामा जी के मन में सुंदरता का अभिमान बहुत ज्यादा था जितनी आठ पटरानियां हैं उनमें सत्य भामा जी के मन में पर मैं बहुत सुंदर हूँ ऐसी हूँ तो एक दिन न सत्य भामा जी ने विचार किया कि ये हनुमान है ये मेरे को तो नमस्कार नहीं करता सीता जी को करता है तो राम जी के पास में सीता जी ने सत्य भामा का रूप धारण कर लिया तो राम जी के चरणों में गिरे तो महाराज ये कौन बंदी बंदी सी भाई कौन है ये कौन है महाराज हमारी माँ तो नहीं है तो। वो समझ रही मैं रूपों से ज्यादा हूँ हनुमान जी को तो पसंद नहीं हमारी मैया नहीं है ये हमारी माँ नहीं मेरी माँ नहीं है वो अपनी माँ को देखते माँ का प्रेम आता है तो माँ है वो पर माँ का रूप ये कैसे हुआ हमारे रूप तो माँ का रूप अच्छा लगता है। एक बार हनुमान जी महाराज अयोध्या में थे तो सुबह पहुंचे मैया के पास मैया हाँ बेटा बोलो भूख लगी लाओ करे बनाओ करे भूख लगी है अच्छा अच्छा मैं स्नान कर लू फिर सर करवा दूंगा। माता जी ने स्नान किया स्नान करके माँ कलेवा अरे ठहर जा भाई मैं देख श्रृंगार जिसमें श्रृंगार किया जाता है उसमें जाकर मैं श्रृंगार कर लू और फिर ठहर जाता उसमें चले गए उसमें जाकर माता जी ने श्रृंगार किया तो देखा यहाँ पर सिंदूर लगाया हुआ हनुमान जी देखा क्या माँ ये क्यों लगाया आपने ये सिंदूर क्यों लगाया है कि बेटा इस सिंदूर से महाराज की आयु बढ़ती है महाराज की उम्र बढ़ती सुहाग का चिन्ह है तो इस वजह से महाराज की उम्र बढ़ती ठीक सा सीता जी गई कलर लाने गई भीतर ये चले गए उन्हें श्रृंगार कक्ष जहाँ सीता जी श्रृंगार करती थी वहां पड़ा सा डब्बा सिंदूर का पट गया उसको उठा करके बंद थे पट को बिखर गया अब उस सिंदूर को लगाने लगे सब सजी लगा दिया सिंदूर लगा दिया सब गई वहां से वो माँ है कले वाले कहा गया हनुमान ओ हनुमान कहा गया हनुमान बात मिल गई कि माँ ने सिंदूर इतना लगाया जिससे रघुनाथ जी की उम्र बढ़ जाए, मैं सब में लगा लूं तो कितनी उम्र बढ़ेगी। तो फिर खुशी होकर गए सभा में, सभा में देखा तो अरे हनुमान आज क्या बात है, ये कैसे लगा कि महाराज ये बात माँ ने बताई मेरे को, मैं तो जानता नहीं था, मेरे को पता ही नहीं, माँ ने बताई। अरे क्या बताया कि माँ ने सिंदूर लगाया हुआ। मैंने कहा माँ ये सिंदूर क्यों लगाया है, कि सिंदूर से महाराज की उम्र बढ़े, तो इतने से सुंदर से बढ़े तो सब लगा लो, महाराज की उम्र बहुत बढ़ जाती। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है, देखिए ज्ञान। राम जी उम्र बढ़ जाए, राम जी खुश हो जाए, अपने कुछ भी हो कैसा ही हो, नहीं माँ ने बात बता दी कि महाराज की उम्र बढ़ती है, इस बात अपने तो लगाने से। तो राम जी की उम्र बढ़ी जो करना है बस, मैं बदलू क्या दूसरा क्या धन धन क्या बात है, ऐसा हनुमान जी महाराज तो राम जी के भक्त है। तो सीता जी के समान कोई नहीं दिखती उनको, ऐसी माँ तो मेरी माँ ही है बस, ऐसे माँ कोई है ही नहीं। लंका में गए तो पहले तो मिली हुई नहीं थी, ये तो किसकंदा में वहां परिचय हुआ ना राम जी के साथ, तो उसमें सीता साथ में नहीं थी। अब लंका और सीता जी ढूंढने गए तो सोचा क्या पहचान भी सीता जी कौन सी है, तो महाराज वहाँ बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, नाग कन्या देव कन्या बड़ी बड़ी अप्सराएं रावण ने जबरदस्ती लिया, वो तो हर गंगे जो सुंदर देख लिया था, उनको सोती हुई देखी तो देखा कि ये भाई सुंदर है सीता जी के ना, ये तो सीता जी इसको नींद आ रही है, सीता जी नींद थोड़ी आएगी भगवान के वियोग में, ये तो नींद दे रही है सीता जी नहीं है। फिर एक सोती इस बात सुन इस मदिरा की गंध आ रहा है, इसके मुख में मदिरा की गंध आती है, मेरी माँ तो मदिरा लेती नहीं कैसे पिएगी, ये माँ नहीं है। ऐसे सोती हुई स्त्रियों को देखते है बड़ी सुंदर सुंदर अफसराए सुंदर सुंदर को देखते है, पास में जाते देखते ऐसे वाल्मीकि मुनि लक्ष्मण के बाद ठीक बंदर की दूसरे ऐसा करते हैं। देखते देखते मन में आया अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, ब्रह्मचारी को तुष्टि को देख लेनी चाहिए, जिसमें सोती हुई है कोई अंग खुला है कोई फाड़ा है कोई रखा हुआ है, ऐसे अंग दिखते हैं इनके तो ये तो ब्रह्मचारी का काम नहीं भाई, ये तो हमें देख लेनी चाहिए, स्त्रियों को सूची नहीं देखना। फिर मन में वो मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, ब्रह्मचारी क्या माँ को नहीं देखता क्या, मैं तो माँ को नहीं देखता हूँ, मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं। फिर देखने लग गए मेरा स्त्रियों को देखने का मन ही नहीं है, स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो मेरी माँ को ढूंढ रहा हूँ, माँ को माँ को वाल्मीकि रामायण शुरू का अनुभव है। फिर सीता जी देखा वो विभीषण से मिला पता लगा तब वहां गई, तो ऐसे देखते सब मूर्तियों को देखते परंतु कोई नहीं, ये तो सीता जी नहीं है, अटकल लगाते ही नींद आ रही है, इसमें तो मदिरा गंध आ रही है, ये तो ऐसी है, ये तो सीता नहीं है, ये तो हमारी माँ नहीं है, ये तो नहीं है। फिर वह पहुंचे अशोक वाटिका में तब पता लगा, तो वह पता लगा वो विभीषण से पता लगे वो आ गए, तो माँ को ढूंढते रहे, अब पहले देखी हुई हो तो परिचय हो जाए, फिर देखा ही नहीं, अब परिचय क्या है, तो वे देखते सीता माता को, तो अनेक स्त्रियों को देखते स्त्रियों को देख, मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ। फिर वहां शंका मिट गई मन में आया कि मैं कैसे स्त्रियों को देखा, हाँ मैं स्त्रियों को मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ को ढूंढता, माँ के ढूंढने में थोड़ी दोष लगता है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज बड़े सीधे चल रहे, एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों ने सलाह करी कि हनुमान ये सेवा करता है, महाराज जी सेवा हनुमान करता ही चला, तो इनमें कुछ हम लोगों को भी सेवा मिलनी चाहिए नी, रघुनाथ जी की सेवा हमारों को मिलनी चाहिए। देवर भाई की बात हुई आपस में, कुछ समय सेवा हमारे को मिले, कुछ सेवा आपको मिले, दोनों में विचार किया। तो हनुमान जी, हनुमान तू अकेले ही सेवा करता है, हम भी सेवा करना चाहें, तो आप ऐसा करो, आप सेवा लिख लो, कौन सी सेवा आप करोगे, कौन सी हनुमान करेगा सेवा, लक्ष्मण जी करेंगे, लक्ष्मण जी सीता जी सेवा कर लो, आप लिख दो हमारे को, तो ये सेवा तो हम करेंगे। मेरे तो आप भी पूजनी है, हनुमान राम जी भी पूजनी, लक्ष्मण जी भी पूजनी, सीता जी भी पूजनी, आदर नहीं मेरे, तो आप सेवा करो, वो ठीक है मैं मजदूर जी करूंगा। तो सेवा ने लिस्ट दे दी, ये सेवा राम जी करेंगे, लक्ष्मण जी ये सेवा करेंगे, सीता जी। हनुमान जी ठीक है भाई, आप मालिक हो, अब आप सेवा करो, अब बस जाके दूसरे मैं करूंगा। तो सेवा कोई बचे ही नहीं, तो राम जी जब जमाई ले गए, उबासी ले गए, तो समय चुटकी बजा देगा, सिकोत पतर धर्म वासु जीवो जीवो तिष्ठ करत ध्वनि गुरु रवि सकर सभ्य अन्यथा ब्रह्मावेश। उबासी और चुटकी बजानी चाहिए, बसमत है वचन है, गुरु को ही रचा है, चेला हो गुरु को और खुद हो, ये चुटकी बजानी चाहिए। तो ये उस में लिखी हुई नहीं थी, तो राम जी जब उबासी रहे तो हनुमान चुटकी बजा दी, कैसे करता है? ये लिखी हुई नहीं, देख लो आपकी सेवा में लिखी हुई नहीं है, आपकी सेवा में नहीं रहता, आप करो, मैं तो पूजनी, आदरणी, माँ भी पूजनी और लक्ष्मण जी भी पूजनी, आप सेवा करोगे, ये तो लिखी हुई नहीं है, ये तो सेवा मैं करूंगा। तो उसे भी ये तो हनुमान तेज निकला, इसने सेवा ले ही ली, हमने तो ढूंढ करके विचार किया कि अब सेवा कोई बचावे नहीं, हनुमान जी लगे। अब रात्रि हुई, भगवान पधारे वनवास में, तो हनुमान जी के साथ में, अरे हनुमान कैसे आता है, कैसा मेरे को सेवा मिली है, अब जमाई कब आ गया आपको क्या पता, वहाँ पर सेवा मेरी सेवा ये है, मैं तो जाऊंगा जी। सीता जी बोली बड़ी मुश्किल ये तो, अरे तू वहाँ भीतर से रहेगा कैसा, भगवान को करे जमाई आ जा तू, फिर मेरी सेवा तो मैं चले जाऊंगा ऐसे ही। नहीं नहीं जा अब जा, माँ ने कह दिया कोई बात, जा यहाँ भीतर नहीं आना। अब पास चले गए, अब बैठ गए छाजे पर बैठ गए, अब चुटकी बजाने लगे, अब देखता तो देख उनको तो चुटकी बजा दू, अब उनको कब आवे जमा कह दे चुटकी बजाने लगे, चुटकी बजा रहे गए राम जी हाँ। तो सीता जी महाराज क्या हो गया, वो चुटकी बजाओ उनको, समय आवाज़ चुटकी बजा रही है, चुटकी बजा रहे समय आ गया राम जी को, अब हो गए मुश्किल। अब सीता जी की बड़ी होगी क्या हो गया, जाकर माता कौशल्या से कहा महाराज आप देखो सी आपके राजकुमारी क्या हो गया, तो अभी अभी बैठे हनुमान जय सीताराम 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 सीताराम, वो मस्ती में अपने ऊपर था महल के ऊपर छाजे पर रात्रि में हनुमान बता रहे सीताराम बोल रहे। अब कौशल्या माता आई, क्या हो गया लाला क्या हो गया, अब कौन बोल रहे साहब, वशिष्ठ को बुलाए, बुलाओ सही वशिष्ठ को बुलाए, तो महाराज राम लाल के क्या हो गया, ये तो आई हुई बैठा है वशिष्ठ जी महाराज आए, और बोले वो हनुमान कहाँ गया, हनुमान तो बाहर बुलाओ, हनुमान बुलाओ क्या बात है, तो क्या हमारी समझ में नहीं आती, हनुमान को बुलाओ, हनुमान जी आए, अरे हनुमान क्या बात है, मैं क्या जाऊँ क्या बात है, सेवा है जो ये दोनों देवर भुजाई ने आपने मिल करके और कह दिया कि करे सेवा करता है हम करेंगे सेवा। भैया तो आप एक पूजनीय हो, आप करो सा माता जी करो लक्ष्मण जी करो सेवा आप करो, मैं थोड़ी मना करता हूँ। तो सेवा लिख ली तो चुटकी बजाने की सेवा तो लिखी नहीं उसने कहीं भी सेवा, तो ये सेवा मेरे आ गई तो मैं चुटकी बजाया करता हूँ। भीतर गया तो माँ ने कर देने नहीं आना बात चले जाओ, तो माँ का कहना मन नहीं पड़े बच्चा तो क्या करे, मैं मेरी चुटकी बजाने लग गई। अब कभी आओ जब मैं आवेगी तो हमारी चुटकी सेवा हो जाएगी। तब देखो ये बात है तो गया ऐसा रहता तुम किया कर सेवा किया कर तो खुली हो गई। तो सेवा करने जिसके मन में हो उसको कौन है सेवा न करने दे, ऐसे हनुमान जी महाराज है समझे, राम जी की सेवा करे सीता जी की सेवा करते सिंदूर लगाया देगा तो कलेवा करना भूल गए, भूख लगी माँ के पास गए माँ भूख लगी और गया लंका में गए ना तो बंदर ठहरे ना कि सुंदर वृक्षों के फल लगे हुए फल लगा भूख लगी माँ भूख लगी भूख लगी तो माँ से क्या बालक और गुरु कैसा भूख लगे माँ के पास जाए कि माँ भूख लगी माँ कहे राक्षस बहुत है यहाँ खा जाएंगे तिलकर भय राजा माता कोई ना माँ उनका भय मेरे को नहीं है तुम समझो। अरे माँ तो थोड़ा कुछ खा ले तो माँ तो राजी होगी थोड़ा कुछ खा ले उनका भय नहीं है तुम सुख मानो तो सुख तो माने खट्टा मीठा बंद कर मीठा मीठा फल मधुर फल खाओ क्या मीठे खाना खट्टा फल खा ले छोड़े का कंठ खराब हो जाए खाना और नीचे पड़ जाना वो खाना ठीक है पकड़े से नीचे पड़ जाता है तू करो उठा नीचे कर दिया उठा करो नीचे ही पड़ा सब नीचे ही पड़ा उल्टे कर दिया कैसे सब जानते ऐसे हनुमान जी महाराज है माँ को लेके भूख लग गया बालकों की ऐसे माँ के अंदर भूख लग जाए और माँ है तो बेटा कुछ खा रहे राम जी गए महाराज बनवास के समय नमस्कार कर रहे तो कौन सा कह रहे माँ बेटा बेटा तो नहा रहे जल्दी थोड़ा बेटा खा लो आज सवारी निकलेगी बहुत देरी हो जाए कुछ खा ले। माँ का स्वभाव है खाना खाने खिलाने का बालक का है खाने का ऐसे हम माने नारायण 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 ये बात हो रहा है तो ये अहंकार मिट जाता है। नारायण 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 कितना बज गया भाई चार नहीं बजा अभी से मैं सो देरी हो जाएगी जल्दी जल्दी करी बात देरी हो जाएगी। तो ऐसे हनुमान जी बड़े सीधे बड़े सर भक्ति के आचार्य है और कहते हैं जानू नहीं कर भजन उपाय भजन उपाय में जान से नहीं मना क्या भजन अभिमान है ही नहीं बीच में ये कहते अभिमान अरे अभिमान कैसा है ऐसा अभिमान भगवान का मैं हूँ ये जानते हैं। लंका पर जाने के लिए अलग अलग सबने अपना बल बताया हनुमान जी जा मान कहते हैं का चुप साध रहे हो भगवान जामवंत के सुनो हनुमाना का चुप साध रहे हो बलवाना तुम चुप कैसे बैठे तुम तो बलवान हो चुप कैसे बैठे हो पवन तने बल पवन समाना बुद्ध विवेक विज्ञान ले जाना पवन पुत्र हो बुद्धि विवेक खजान हो तुम तो इतने बड़े भारी है कौन संसार में ऐसा काम जो तुम्हारे से नहीं होता हनुमान सुनते जब काज राम काज लगी तब अवतारा, तेरा अवतार राम ये काम करने सुनते ही प्रभु करा। बुद्धिमान हो बलवान हो तो कोई काम न हो जैसा है ही नहीं, सबका कोई असर नहीं पड़ा, इनका असर नहीं पड़ा हनुमान जी पर। राम काज लगी तो राम काज कहीं भी को आतुर, राम जी का काम करने के लिए तो आतुर, भूख लग गया खुदातुर होता है, कोई तृष्णातुर होता है, ऐसे हो गए मने। राम जी का कार्य लगता हुआ अवतार सुनते ही भयो पर्वताकार पर्वताकार हो गया। अब बताओ हनुमान, हनुमान जी कहते हो हनुमान जी आप बात बताओ क्या करना हुआ। त्रिकुट स्थल पर गुजरे हूँ, जिस त्रिकुट स्थल पर गंगा की लंका फंसी है उस पर्वत को उठा दे मुझे। ना ना नहीं करना, ऐसा ऐसा नहीं करना, तो क्या करूं बताओ। देख सीता जी को देख कर रहा हूँ, खबर लेकर क्या हूँ, सीता जी कहाँ है, खबर लेने की बात है और नहीं करना कुछ भी। अच्छा ठीक है, राम जी आए थे बंदरों को लेकर के, लंका पर चढ़ाई करेंगे, राक्षसों पर विजय करेंगे और सीता को लेकर गाएंगे, नारदादी जस गाएंगे, ऐसा पीछे होगा, तू मत करना कुछ भी, खबर नहीं करा जाना, खबर नहीं कैसा। अब वहां देखा तो वहां अशोक पर बैठे थे, सृजिता बोल रही थी, ऐसे सहायता कर देता हनुमान जी काम करें, देवता सहायता करें, सरस्वती सहायता करें, सब सहायता करें, पवन चला जोर से पवन, वह पवन में मजा उल्ट पुलट लंका सब जा रही, कोई इधर उधर बाकी नहीं रह जा रहे, उछल पुछल करके अच्छी तरह जला दिया। पवन से क्या हुआ, हनुमान जी के तो हो गए ठंडे के हो गए, पवन पुत्र ठहरे, इस बार आंस लगे नहीं, और अब पवन जोर से चल रहा, आग बड़ी जोर से, तो गंगा तो जल गई, अरे हनुमान जी वहां से आई ही नहीं, समुद्र में कूद गए। ऐसी बात है नारायण, तो ऐसा अभिमान जायज नहीं हो रही, मैं सेवक रघुपति हनुमान जी महाराज है, हनुमान की सेवक है, तो ये अभिमान दोषी नहीं है, भगवान का अभिमान बहुत बढ़िया चीज है। नारायण नारायण नारायण, अब और शंका तो बोलो खरी से वसंत के रामायण में आया है, जय मत प्रभु प्रसन्न हो, करुणा सागर कीजिए सोई, तो गीता के समर्पण में रामायण के समर्पण में क्या अंतर है, कुछ नहीं अंतर में क्या हो। अरे आपके घर की कन्या अपने को समर्पित कर देती है ससुराल में, तो वो उसका गोत्र भी बदल जाता है, अर्पण करने में क्या फर्क पड़ेगा, अर्पण कर पूर्ण सब बदल जाता है, सब कुछ बदल गया अपना आप। रामायण को हो चाहे गीता जी को हो, इनकी बात है, समर्पण होना चाहिए, मैं पर अपना नहीं रहा, अब मैं पर भगवान का हो गया। घर की कुंवारी है वो ब्याह होने पर कुंवारी नहीं रहती, साहब को गोद गोद होते है, गुलाम को भगवान के शरण हो जाए वो कच्छन से अच्युत गोत लेना, सब अच्युत गोत हो जाए। नारायण 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 ना।